प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बाइबल की मार्गदर्शक रूपरेखा देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और इसे एक अनोखी पुस्तक क्यों कहा गया है और इसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन क्यों कहा जाता है, इन बातों पर विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्रकाशन, प्रेरणा, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या का क्या अर्थ है तथा बाइबल और उसके प्रत्येक अध्याय का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
श्रोता, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में हमने सीखा कि पवित्र बाइबल क्यों महत्वपूर्ण है और पवित्र बाइबल अन्य पुस्तकों से भिन्न क्यों है। हमने यह भी देखा कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है और उसके लिए हमने दो कारणों पर विचार भी किया और उसमें से पहला कारण पवित्र बाइबल को सुरक्षित रखना और दूसरा कारण पुरावशेष विभाग का प्रमाण। आज के अध्ययन में हम इसके आगे के कारणों पर विचार करेंगे कि पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से है। तो इससे पहले कि हम इस पर विचार करें, आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है और आज के इस सुंदर समय के लिए भी जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि फिर से हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन से सीख सकें। हमारी प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम के प्रत्येक सुनने वाले श्रोता को आप आशीष दें। यदि कोई दुखी या निराश है तो आप उसे अपनी शांति प्रदान करें, ताकि हम सब आपके वचन का अध्ययन आनंद के साथ कर सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोता, आज के अध्ययन में हम तीसरे कारण को देखेंगे और वह है बाइबल परमेश्वर की ओर से है। इसे प्रमाणित करने के लिए आइए हम इसके तीसरे कारण को देखें और वो है भविष्यवाणियां पूरी हुई। प्रिय श्रोता, यदि कोई मुझसे यह पूछता है कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है तो इसका एक प्रमाण दीजिए, तो क्या आप जानते हैं कि मेरा उत्तर क्या होगा? मेरा उत्तर होगा कि इसमें लिखी भविष्यवाणियां पूरी हुई है। जी हाँ, बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई है जिसे आप झूठला नहीं सकते, और पवित्र बाइबल ऐसी भविष्यवाणियों से भरी पड़ी है जो पूरी हुई है। पवित्र बाइबल का एक चौथाई भाग जब लिखा गया तब वो एक भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया, अर्थात ऐसी बातें जो भविष्य में पूर्ण होने वाली थी, उसमें से एक बड़ा भाग पूरा हो चुका है जो मनुष्य की कल्पना से दूर है। हम पवित्र बाइबल में उन हिस्सों को देख सकते हैं जहां पर भविष्यवाणियां पूर्ण हुई। कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जो भविष्यवक्ता के समय काल में पूरी हो गई। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि पहला राजा की पुस्तक और उसका 22 अध्याय, जहां पर मीकायाह भविष्यवक्ता ने इसराइल के राजा आहाब से कहा कि यदि वह अपनी योजना के अनुसार युद्ध भूमि में गया तो वह निश्चय हार जाएगा और मारा भी जाएगा। परंतु आहाब राजा के झूठे भविष्यवक्ताओं ने उससे कहा कि राजा विजयी होकर सकुशल वापस लौट आएंगे। परंतु मीकायाह की कही हुई बातें राजा को अच्छी नहीं लगी, इसलिए राजा आहाब ने आदेश दिया कि भविष्यवक्ता मीकायाह को बंदीगृह में डाल दो और जब तक मैं कुशल से ना लौट आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान ले कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। जी हाँ, परमेश्वर ने मीकायाह के द्वारा स्पष्ट रूप में राजा आहाब से बातें की। इसका प्रमाण यह है कि उसके वचन के अनुसार राजा आहाब युद्ध भूमि से वापस नहीं लौटा, अर्थात वह युद्ध में मारा गया और उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ा। यद्यपि वह युद्ध भूमि में भेष बदल कर गया ताकि वह मारा ना जाए, परंतु पवित्र बाइबल में बताती है कि जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तब शत्रु के एक सैनिक ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इसराइल के राजा के झीलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि उस तीर में आहाब राजा की मृत्यु लिखी थी और उस तीर ने राजा को ढूंढ निकाला। यह इसलिए भी हुआ क्योंकि मीकायाह भविष्यवक्ता ने सही भविष्यवाणी की थी। ऐसी घटना हम दूसरे स्थान में भी पाते हैं, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय और 32 पद। दूसरा राजा उसका 19 अध्याय और 32 पद, यहाँ पर लिखा है, यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की और कहा कि अश्शूर का राजा यरूशलेम नगर में न तो प्रवेश करने पाएगा और न ही इस नगर पर कोई तीर मारने पाएगा। अब यहाँ पर एक रुचिदायक बात यह है कि मीकायाह की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी क्योंकि एक सैनिक ने अटकल से या अंदाज लगाकर एक तीर मारा और वह राजा आहाब को लग गया। परंतु यशायाह की भविष्यवाणी यह है कि कोई यरूशलेम पर तीर नहीं चलाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि 200,000 सैनिकों में से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक तीर यरूशलेम की शहरपनाह के अंदर मारे? क्या कोई तीर नहीं मार सकता था? वे तीर मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यदि शत्रु यरूशलेम शहर के अंदर तीर मार देते तो लोग यही समझते कि यशायाह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया भविष्यवक्ता नहीं है। परंतु यशायाह ने 700 साल पहले यह भी भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। यह भविष्यवाणी भी पूरी हो गई है जो यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले की गई थी। यदि आप भविष्यवाणी से संबंधित और भी प्रमाण चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 300 से भी अधिक ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के जन्म वह उसके इस पृथ्वी पर प्रथम आगमन के बारे में है और ये सब भविष्यवाणियां पूर्ण हो चुकी है। जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके हुए था उस समय पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता उसका 69 अध्याय और 21 पद भजन संहिता 69 अध्याय और उसके 21 पद में लिखी भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी। उन्होंने खाने के लिए मुझे इंद्रायन दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसके 19 अध्याय और उसके 28 पद से 30 पद में कहते हैं, यूहन्ना 19 अध्याय उसके 28 और 30 पद में, 30 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यह बहुत आश्चर्यजनक है जिसकी कल्पना मानव नहीं कर सकता। भजन संहिता 22 में मसीह के क्रूस की व्याथा का भजन है और यह चारों सुसमाचार में पूरा हुआ है। इसराइल जाति के मध्य में भविष्यवक्ता का सत्य प्रमाणित होना अनिवार्य था। यदि भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी झूठी साबित हुई तो उस भविष्यवक्ता को पत्थरवा करके मार दिया जाता था क्योंकि वह झूठा नबी माना जाता था। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि वे सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता को उनके कार्यों या भविष्यवाणी के द्वारा पहचान लेंगे। एक सच्चे भविष्यवक्ता को सर्वप्रथम स्थानीय परिस्थितियों में भविष्यवाणी करना आवश्यक था, जैसे यशाया नबी ने किया। और जब स्थानीय भविष्यवाणी सही निकले तब वे जान जाएंगे कि यह सच्चा भविष्यवक्ता है और वे लोग उसके द्वारा कहे गए भविष्य की भविष्यवाणी पर विश्वास करेंगे, जैसा कि यशाया ने किया। अब हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि सब भविष्यवाणियां पूरी हुई और यह पवित्र बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसका प्रमाण यह है, पवित्र बाइबल में इस प्रकार की बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। उदाहरण के रूप में 2500 साल पहले परमेश्वर के वचन में सूर और सैदा के बारे में लिखा गया था और आज वे उसी स्थान पर स्थित हैं जहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा गया था। परमेश्वर ने दुनिया में अलग अलग देशों को नियुक्त किया और आज वे उसी स्थान पर हैं जहां परमेश्वर ने उन्हें रखना चाहा था। प्रिय मित्रों, ये सारी बातें आश्चर्यजनक लगती है लेकिन भविष्यवाणी का पूरा होना इस बात को प्रमाणित करता है कि पवित्र बाइबिल परमेश्वर का वचन है। आप इस बात को परख कर देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतनी सही और सटीक बात नहीं कह सकता, न ही कर सकता है। अर्थात मनुष्य से अवश्य ही कुछ न कुछ गलती हो सकती है। मनुष्य किसी तरह अनुमान लगाकर भी पूर्णतः सही नहीं लिख सकता क्योंकि उसमें गलतियां दिख जाएंगी। इसलिए यदि पवित्र बाइबल में कोई त्रुटि या गलती नहीं है तो निश्चय ही यह परमेश्वर का वचन है जो भविष्यवाणी के पूर्ण होने के द्वारा भी इस बात को प्रमाणित करता है। प्रिय मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणित के नियम के अनुसार आप किसी भी समस्या के अनुमान के आधार पर कोई भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं उस नियम के अंतर्गत एक भविष्यवाणी करता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि आप कल कहीं भी रहें बारिश अवश्य होगी। मेरे इस भविष्यवाणी के अनुसार मैं 50% ठीक हो सकता हूं क्योंकि कल दो में से एक बात अवश्य पूरी होगी, कल या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। यदि मैं और कुछ उसमें जोड़कर भविष्यवाणी करूं और कहूं कि कल सुबह 9 बजे बारिश होगी और यह मेरे लिए एक अनिश्चितता वाली बात होगी क्योंकि पहली भविष्यवाणी के अनुसार मैं 50% ठीक था कि उम्मीद की जा सकती है। यहां पर यह द्वारा बताने का कारण यह है कि आप जितना अधिक अनिश्चित बात कहेंगे उतनी ही अधिक आपकी उम्मीद कम होती जाएगी और 50% पूरी होने वाली आशा 12.5% में अब आप मेरी भविष्यवाणी की मैं कितनी हद तक सही हो। इसलिए यदि मैं ऐसी 300 भविष्यवाणियां करूं जो अनिश्चित हैं तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि इनमें से एक भविष्यवाणी भी सही होगी। प्रिय मित्र, मैं सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए ऐसा करना असंभव है, परंतु परमेश्वर के वचन ने ऐसा किया है। पवित्र बाइबल पूर्णतः असंभव लगने वाले क्षेत्र से होकर पार हुई है और मेरे लिए एक प्रमाण है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। इस पुस्तक से तुलना करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और मैंने यहाँ पर आपके सामने भविष्यवाणी के कुछ उदाहरणों को रखा जो पूरी हो गई हैं, परंतु इनके अलावे ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं जो पूरी हो चुकी हैं और मैं ऐसा सोचता हूँ कि परमेश्वर के उसी सिद्धांत के अनुसार बाकी बची हुई भविष्यवाणियाँ भी पूरी हो जाएंगी। प्रिय मित्र, आइए हम आगे बढ़ें और बाइबल परमेश्वर की ओर से दिया गया है उसके चौथे प्रमाण को देखें और इसके चौथे प्रमाण में हम देखते हैं परिवर्तित जीवन, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, बदला हुआ जीवन। इस संबंध में मैं आपके सामने दो अंतिम प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। उन दो प्रमाणों में से पहला प्रमाण है मसीह के विश्वासियों का परिवर्तित जीवन। मैंने बड़ी गहराई से देखा है कि परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल स्त्री और पुरुषों के जीवन में कैसे कैसे महान कार्य करती है। उन अनगिनत परिवर्तित जीवन में से मैं भी एक हूँ। मैं भी परमेश्वर के वचन से 19 साल पहले दूर था और पापपूर्ण जीवन जीता रहा, लेकिन एक दिन परमेश्वर के वचन में मैंने पाया कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल के रोमियों की पत्री उसके 3:23 में ऐसा लिखा हुआ है। और मैंने यह भी जाना कि प्रभु यीशु सारे मानव जाति के पापों के बदले में क्रूस पर चढ़ाए गए, मेरे पापों के बदले भी वे क्रूस पर चढ़ाए गए। इसलिए मैंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और प्रभु यीशु से माफी मांगी, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना की पत्री उसका 1:9, 1 यूहन्ना की पत्री 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, इस वचन के अनुसार मेरा जीवन 15 फरवरी 1990 में परिवर्तित हो गया। मेरा जीवन अब क्षमापूर्ण और शांतिमय जीवन बन गया है और उसकी सेवा में बना हुआ हूँ। आज असंख्य विश्वासी पवित्र बाइबल के संबंध में यही गवाही देते हैं कि वे शराबी, जुआरी, व्यभिचारी, हत्या, घुसखोरी, चोरी इत्यादि बुराइयों में फंसे थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उनका जीवन बदल गया है। उन्होंने अपने जीवन में सच्चे और जीवित सृष्टिकर्ता को पा लिया है। जी हाँ, इस प्रकार की गवाही आपकी भी हो सकती है यदि आप भी अपने पापों के लिए प्रभु यीशु से क्षमा मांगे। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं? तो आज आप अवश्य प्रार्थना करें। इस वक्त मुझे एक रेडियो श्रोता के बारे में याद आ रहा है जिसका जीवन अनेक समस्याओं से भरा हुआ था और वह पाप में ऐसा डूबा हुआ था जैसे कोई भी पापी व्यक्ति डूबा रहता है। इस व्यक्ति ने हमारे रेडियो कार्यक्रम को सुनना आरंभ कर दिया जैसे दूसरे लोग भी सुनना आरंभ करते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक बार सुसमाचार को सुनते हैं और उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना संभव है और यह आश्चर्यजनक भी है, परंतु यह व्यक्ति कुछ अलग प्रकार का था। उसने कई हफ्तों तक रेडियो कार्यक्रम सुना और जीवन परिवर्तित होने के बजाय वह विरोधी हो गया और वह बहुत क्रोधित भी हुआ। कुछ समय के बाद उसने मुझे बताया कि जब आप रोमियो की पत्री से अध्ययन करा रहे थे तो आपने मुझसे कहा कि मैं पापी हूँ, यदि उस समय आप मुझे कहीं मिल जाते तो निश्चय ही मैं आपकी नाक में एक जोरदार घूंसा मारे बिना नहीं छोड़ता। मित्र, मैं आपसे सच कहता हूँ, यदि मैं उसे कहीं मिल जाता तो वह मुझे घूंसा मारे बिना नहीं छोड़ता, क्योंकि वह बहुत गुस्से में था। वह मुझसे बहुत बड़ा था और मैं उसके सामने एक बौना था। मुझे इस बात की खुशी है कि वह मुझे नहीं ढूंढ सका। अंततः एक दिन यीशु मसीह के वचन ने उसके जीवन को बदल दिया। उसका हृदय परमेश्वर के लिए हो गया। जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके जीवन में किया वह वास्तव में अद्भुत और आश्चर्यजनक था। हम बार बार इस प्रकार की गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे बदलाहट को लाया है। बूढ़े तथा जवान व्यक्तियों ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है, जीवन में भरपूरी आ गई है, परिवार टूटने से बच गए और टूटे हुए परिवार फिर से बस गए हैं। कई शराबी और नशीली पदार्थों का सेवन करने वालों ने अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा लिया है। प्रिय श्रोता, लोगों के जीवन में परिवर्तन तब हुआ जब वे यीशु के पास आए। आज यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, तो अभी इसी समय आप प्रभु यीशु के पास शरण में आ जाएं। वह आपके पापों से और आपकी बुरी आदतों से पूर्ण रूप से छुटकारा देंगे और आपको एक परिवर्तित जीवन देंगे। आप प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लें और कहें कि हाँ प्रभु, मैंने आपके विरोध में पाप किया है और अब मैं पश्चाताप करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन को नया बना दें। प्रिय मित्र, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका वचन जीवन को बदलने वाला वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बाइबल सेमिनारी की शिक्षा को प्राप्त किया तो मैं बहुत उत्साहित हुआ और परमेश्वर के वचन से हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार था और चाहता था कि कोई मुझसे कुछ पूछे ताकि मैं उसे जवाब दे सकूं। मैंने बहुतों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब मुझे मालूम हुआ कि जो वचन मैं उन्हें दे रहा हूं वह मेरे सांसारिक ज्ञान पर आधारित वचन है, न कि परमेश्वर के पवित्र वचन पर आधारित वचन। तब मैंने अपने ज्ञान के घमंड के लिए प्रभु से माफी मांगी और पवित्र बाइबल के वचन को लोगों तक सरलतापूर्वक पहुंचाने का प्रयत्न किया, क्योंकि केवल परमेश्वर का पवित्र वचन ही एक पापी के जीवन को बदल सकता है और उसे पापी से संत बनाता है। प्रिय मित्र, हम इस अध्ययन में यह देख रहे हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसको समझने के लिए अब तक हमने चार कारणों को देखा है। आइए हम आगे बढ़ते हुए इसके पांचवें कारण को देखें, जिसके द्वारा हमें मालूम होता है कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो पांचवा कारण है, परमेश्वर का आत्मा वचन को वास्तविक बनाता है। परमेश्वर का आत्मा वचन को वास्तविक बनाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने सांसारिक ज्ञान के आधार पर वचन बांटता था, लेकिन इसे छोड़ने का भी एक कारण है, क्योंकि आज मैं उस स्थान पर पहुंच गया हूं जहां पर मैंने सिर्फ विश्वास ही नहीं परंतु यह जानता हूं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसने मेरे हृदय के विचारों को और मेरे जीवन को भी बदल दिया है। परमेश्वर का दास पौलुस कुलुसे में रहने वाले उन विश्वासियों से बातें करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम परमेश्वर के सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कुलुसियों की पत्री उसके एक अध्याय और उसके 9 पद में हम इन बातों को पाते हैं। पौलुस की यह प्रार्थना उन विश्वासियों के लिए जरूरी थी ताकि वे परमेश्वर के वचन पर पूर्ण रीति से निर्भर हो सकें। मैं तो यह भी चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा उनके हृदय में इस बात को स्पष्ट कर दे ताकि उन्हें किसी प्रकार की पुरावशेष विज्ञान और किसी अपनी जानकारी की जरूरत न पड़े, जिससे उन्हें परमेश्वर के वचन को प्रमाणित करने के लिए बार बार कोई प्रमाण ढूंढना पड़े। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के दूसरे भाग अर्थात नया नियम, इसमें एक पुस्तक है प्रेरितों के काम। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में परमेश्वर के एक दास पत्रस ने पवित्र आत्मा में भरकर कहा, पापों से पश्चाताप करो और अपने मनों को प्रभु की ओर फेर लो। पत्रस के इस प्रवचन को पवित्र आत्मा ने सुनने वालों के लिए वास्तविक बना दिया और सुनने वालों के हृदय उस वचन से छिद गए और उन्होंने यीशु को अपने हृदय में ग्रहण किया और उसी दिन लगभग 3,000 लोगों के जीवन बदल गए। और वहां की स्थानीय कलीसिया में सम्मिलित हो गए। प्रिय मित्र, यहां पर आप थोड़ा ध्यान दें कि प्रचारक या सुनने वाला दोनों ही एक यंत्र के जैसे हैं, परंतु पवित्र आत्मा ही है जो सुनने वाले के लिए वचन को वास्तविक बनाता है कि वह सुनकर उस पर अपने विश्वास को ला सके। एक बार एक जवान प्रचारक ने अपने मित्र को बताया कि विज्ञान जगत ने पवित्र बाइबल के अवशेषों को खोज निकाला है और यह अद्भुत है। परंतु उसके मित्र ने बड़ी सरलता से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं इसमें कोई नई बात नहीं देखता। यह सुनकर उसका मित्र निराश हो गया, क्योंकि इसने उसके बताए हुए बातों के प्रति कोई खुशी नहीं दिखाई। आखिरकार उसने अपने मित्र से पूछ ही लिया कि क्या तुम इससे अचंभित नहीं हुए कि उन्होंने एक नए प्रमाण को खोज निकाला है। उसके मित्र ने बड़ी सरलता से उसका जवाब देते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता हूं कि यह परमेश्वर का वचन है। इससे पहले कि पुरावशेष विभाग इसे खोज निकाले, मित्र ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि यह परमेश्वर का वचन है? फिर उसके मित्र ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में वचन को वास्तविक बना रहा था, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा न केवल परमेश्वर के वचन को वास्तविक बनाता है, परंतु वह आपके प्रतिदिन के जीवन में भी क्रियाशील बनकर इसे सुगंधित बनाता है, और आपको भरोसा भी दिलाएगा कि आप कहने पाएंगे कि मैं जानता हूं कि यह परमेश्वर का वचन है। प्रिय मित्र, आज के अध्ययन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
शालोम इंटरनेशनल गॉस्पेल म्यूजिक मिनिस्ट्री आभार मानता है प्रभु यीशु का, जो हम आपके सामने ये पुकार वॉल्यूम 8 को सीडी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका श्रेय मात्र उस महान प्रभु यीशु मसीह को जाता है, जो इस जग के तारनहार है। आमीन।